ओम शांति। यज्ञ में दो प्रकार के आदि रत्नों का गायन है, एक है स्थापना के आदि रत्न और दूसरे हैं सेवा के आदि रत्न। स्थापना के आदि रत्न माना हमारी परम आदरणीय दादियां, जो 1936-37 से यज्ञ में स्वाहा हुए स्थापना के समय, और वही दादियां जब सेवा के मैदान में निकली और पहले पहले रत्न जो पैदा हुए और उन्होंने जाकर के देश विदेश में सेवाएं की, जहां ओम शांति नाम नहीं था, ब्रह्मा कुमारी शब्द नहीं था, ऐसे स्थानों पर हजारों ब्राह्मणों की जन्मदाता बने, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा के शब्दों में सेवा के आदि रत्न कहते हैं। आज हम सभी के बीच में ऐसा ही सेवा का एक विशेष आदि रत्न है, जिन्होंने पूर्व के देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, काफी सारे देशों के अंदर आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी ने बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को साथ लेकर के सेवा के बीज बोए हैं। हम सब दीदी जी का एक हाथ की अव्यक्त ताली से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आप सभी मुंबई निवासी भाई बहनों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि दीदी जी भी मुंबई के हैं। आपने भी वहां से ही बाबा को पहचाना, पढ़ाई भी वहां ही की, MBBS कंप्लीट करके साकार बाबा की श्रीमत के अनुसार आपने लौकिक और अलौकिक सर्विस दोनों सेवाएं कुछ समय साथ साथ की, और उसके बाद जब पहला डेलीगेशन विदेश सेवा अर्थ निकला उसमें बाबा ने आपको साथ में भेजा था। तो ऐसे दीदी जी के पास सेवा की, दादियों के अंग संग की बहुत सारी प्रसंग और घटनाएं हैं। श्रीमत के आधार पर आपने अपने जीवन को कैसे निखारा और श्रृंगारित किया, उसकी शब्द कहानी आज हम सभी सुनने जा रहे हैं। दीदी जी वर्तमान समय दादी मनोहर इंदिरा जी के एडवांस पार्टी में जाने के बाद पूरा ही ज्ञान सरोवर का संचालन आप करते हैं, और आपके द्वारा विदेश की सेवाओं का भी अभी भी सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। आज हम सभी सुनेंगे श्रीमत का हाथ और साथ आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी।
ओम शांति। अच्छा, आप में से 10 साल से ज्यादा ज्ञान में कितने हैं, जरा हाथ उठाना। 5 से 10, 2 से 5, 1 वर्ष के अंदर। ठीक है, तो आप सभी यहाँ योग भट्टी के लिए आए हैं। ठीक है, सबका मोबाइल हमेशा बंद रहता है, क्यों? कितना है जिनों के मोबाइल सदैव बंद रहते हैं दिन रात, और कितनों के मोबाइल चालू रहते हैं भट्टी के अलावा, जरा हाथ उठाना। अच्छा, भट्टी के अलावा, भट्टी के बाद। हाँ, अच्छा, क्या है भट्टी में आना माना, देश दे के संबंध और दुनिया से तोड़ना है, ऐसे है ना। तो जितना तोड़ेंगे और मौन में रहेंगे तो नेचुरली है आपका योग ज्यादा डीप होगा। नहीं तो क्या होता है, भट्टी के बाद जब मोबाइल चालू होता है तो सारे घर के जमेले आते रहेंगे, धंधे के जमेले आते रहेंगे, तो नेचुरली है संकल्प चलता है। तो भट्टी में जितना दुनियावी कनेक्शन कम रखेंगे उतना अपने को फायदा होगा। दूसरा, आप लोग खाना अच्छी रीति से खाते हो या नहीं? हाँ, जो अच्छी रीति नहीं खाते जरा हाथ उठाना। देखो, तपस्या होती है ना, तो उपवास करते हैं ना। भक्ति में क्या करते थे? उपवास करते थे। हम उपवास तो नहीं करेंगे, परंतु कम से कम हल्का खाना खाएंगे ना, तो क्या होगा? जितना हल्का खाना खाएंगे पेट हल्का, उतना मन हल्का, इतना मन उड़कर बाबा के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि मधुबन में तो बाकी तो सब है ही, वातावरण है, संग है, सब कुछ है ही। तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, अमृत वेले 4 बजे के पहले कौन आ जाते हैं क्लास में? 4 बजे तक भी? अच्छा, तो ये भी, क्योंकि मेन अमृत वेले का महत्व है कि उस समय यहाँ 4 बजे से भट्टी रखते हैं ना, क्योंकि हमारा जब विदेशियों की भट्टी होती है ना, 3:30 से रखते हैं हम लोग। तो क्या है कि यही समय है अपने आप को जितना यहाँ आके भरेंगे ज्ञान योग से, तो नेचुरली है उससे भरपूर होंगे। तो मैं जब 1962 में ज्ञान में आई, उन दिनों में हम लोग अमृत वेला है ना संगठन में नहीं करते थे। 1968 से बाबा ने संगठन में शुरू किया, 68 मई में। तब तक हम लोग अपने 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 कमरे में, कभी अपनी अपनी बेड में भी याद करते थे। फिर जैसे बाबा ने ये अमृत वेले का महत्व बताकर संगठन में क्लास में शुरू किया, तो क्या है कि नेचुरली है संगठन में वाइब्रेशन में, तो हम क्या कर सकते हैं? और भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए रात को जब सोते हैं तो बाबा की याद में सोना है, और बाबा को बोल के सोना है कि सवेरे हमको जगाना। अलार्म के बगैर कितने उठते हैं? है यहाँ कोई अलार्म बगैर उठने वाले? अच्छा है। तो जितना नहीं मन पर कंट्रोल होगा तो अलार्म भी नहीं बजने की दरकार रहेंगे। तो ये है, अपनी लगन होनी चाहिए। जितनी लगन होगी उतना क्या होगा? योग की अग्नि तेज होंगी। तो योग की अग्नि तेज चाहिए हम लोगों को, क्योंकि यहाँ है अमृत वेले तो बैठते ही है, परंतु अमृत वेले में क्या होता है, कभी कभी सिर्फ हम मनन मंथन करते हैं, कभी कभी नियम से ही बैठते हैं, ये नहीं, लक्ष्य लेके। आप लोगों को रोज का लक्ष्य दिया है ना? हाँ, आज कौन सा लक्ष्य है सारे दिन में? देही अभिमान, और कल क्या था? हाँ, कल शुरू हुआ, आज से शुरू हुआ। अच्छा, तो आज देही अभिमानी का है, तो यही समझो, लक्ष्य रखना है, देही अभिमानी होकर बैठना है और चलते फिरते आत्मा हूँ आत्मा हूँ ऐसे एक दो को देखते रहना। तो जितना अमृत वेले अशरीरी बनकर फरिश्ता बनकर या बिंदु रूप स्थिति में, क्योंकि जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं, लक्ष्य हो कि अमृत वेले हम बाबा की याद में मगन हो जाए। तो कम बिंदी स्वरूप माना कुछ सोचना नहीं, विचार मंथन नहीं, बाबा से चिट चैट नहीं, हाँ, बिंदु बनकर बिंदु में लीन होना, तो ये लक्ष्य रखना है श्रीमत। क्या कि श्रीमत कभी कभी नए हमारे नियम आदि सुनते हैं तो क्या होता है उनको, डर हो जाता है ना, डर लग जाता है कि ये करना होगा, ये छोड़ना होगा। तो ये नियम में फायदा है, जैसे बाबा कहते कायदे में फायदा। तो जैसे रामायण में हमारी क्या निशानी है श्रीमद की, लक्ष्मण रेखा, कि सीता को कहा कि लक्ष्मण रेखा के बाहर जाएंगे तो कुछ भी नुकसान हो सकता है, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अर्थात ये जो हमारी लक्ष्मण रेखा है, जितना हम पालन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी चढ़ती कला हो जाएंगे। नहीं तो जैसे नियम से तो हम भक्ति में भी याद करते थे ना, नियम से, अभी क्या है, प्रेम से याद करना बाबा को। सभी का बाबा से अतुट प्रेम है, अतुट या प्रेम बटा हुआ है? कई बार हमारा प्रेम बट जाता है अनेकों में, तो ये देखना है हमारा प्रेम अनेकों में ना बटे, अर्थात कम से कम हमारा मुंह किसी में ना, क्योंकि जितना हम नष्टो मोहा होंगे, क्योंकि बाबा की सबसे पहली शिक्षा है देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो, पुरानी दुनिया को भूलो और मुझे याद करो। तो इसलिए हमें क्या करना पड़े, पहले तो मैं आत्मा हूं ये अभ्यास करना है, परंतु शरीर के संबंधियों को भी क्या समझना है, अलौकिक रिश्ते से देखना कि ये आत्माएं बाबा के बच्चे हैं हमारे, कौन सा संबंध होगा अलौकिक रिश्ते, भाई भाई और कोई रिश्ता नहीं ना, तो मेरा पति नहीं, मेरी पत्नी नहीं, मेरा बच्चा नहीं, मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं, कोई नहीं, सब आत्माएं भाई भाई बाबा के बच्चे। तो ये दृष्टि पक्की रखनी है, और यहां भी जब एक दो को देखो आत्मा, ये ध्यान में रहे। तो अमृत वेले बाबा से किस शक्ति का हमको प्राप्ति करनी है, ये लक्ष्य हो, किस संबंध से आज सारे दिन में हमें बाबा से प्रेम का सुख लेना है, ये लक्ष्य रखेंगे ना तो नेचुरली है लक्ष्य से प्राप्ति होंगे। तो पहली श्रीमत है अमृत वेले उठो, दूसरा है रोज मुरली का अध्ययन करो, क्लास में जाओ, जैसे भी सुविधा हो। आप में से रोज कौन क्लास में जा सकते हैं? मैं समझ सकती हूँ कि रोज तो सब नहीं जा सकते होंगे। कौन जाते हैं रोज? अच्छा 50%। तो क्या है जो नहीं जाते हैं वो क्या करते हैं? मुरली सुनते हैं? कितने हैं जो पीस ऑफ माइंड चैनल पर मुरली सुनते हैं? बहुत थोड़े। अच्छा, और बाकी क्या करते हैं जो क्लास में नहीं जाते हैं? हाँ हाँ, मुरली जाकर बाद में पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ जी, वही तो, चाहे मुरली पढ़ो चाहे सुनो, ठीक है ना। कौन है जो इंटरनेट से मुरली पढ़ते हैं, जरा हाथ उठाना। वो भी थोड़े, 10-15। 10-15 है जो मुरली पीस ऑफ माइंड चैनल पर सुनते हैं, और 50% है जो रोज क्लास में जाते हैं। और जो नहीं जाते हैं, नहीं सुनते हैं, वो क्या करते हैं? हाँ, ऐसे ही खाना खा लेते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं रोज ज्ञान अमृत का पान करना है। ज्ञान अमृत का पान किए बगैर स्थूल ब्रेकफास्ट नहीं करना है। भक्ति में भी ब्रह्मा बाबा ये कराते थे ना अपने बच्चों को, जब तक पूजा पाठ नहीं किए है चाय भी नहीं देते थे। हम लोग तो अभी चाय पी लेते हैं सवेरे उठते ही, परंतु बाबा बच्चों को अपने चाय भी नहीं देते थे। और मैं कांदीवली में रहती थी, और जब ज्ञान में आई तो सेंटर था वाटरलो मेंशन म्यूजियम के पास, रिगल सिनेमा के पास। तो मैं तो रोज जाती थी मुरली में। 7 बजे मुरली होती थी तो मैं 5:20 की ट्रेन पकड़ती थी, घर से 5:05 को निकलती थी। तो क्या है कि जब लगन होती है तो नेचुरली है लगन से हमको सॉल्यूशन मिल जाता है, नहीं तो कारण बताएंगे, इस कारण है इसलिए नहीं जाते हैं, ये कारण है नहीं जाते हैं। तो ये है कि दिन में एक मुरली जरूर पढ़नी है या सुननी है, ये नियम होना चाहिए। और स्टूडेंट का क्या होता है, और क्वालिटी स्टूडेंट की होनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट है ना, सब ये बुद्धि में रहता है कि हम गॉडली स्टूडेंट है, तो स्टडी जरूर करनी है। और स्टडी में भी क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ में, हमारी लौकिक लाइफ में भी स्टूडेंट जब हम थे, कोई स्कूल में लेट आता था पनिशमेंट होती थी। हाँ, क्लास में अंगूठा पकड़ करके खड़े रहना, दीवार के सामने खड़े रहना, ये पनिशमेंट होती थी। तो पंक्चुअलिटी, बाबा भी कितने पंक्चुअल थे। ब्रह्मा बाबा भी रोज सवेरे एकदम टाइम पर क्लास में आते थे। तो ना सिर्फ क्लास में जाना है, कई बार तो कई क्या करेंगे, मुरली 7 बजे शुरू होती है, 8 बजे 7:45 पूरी होती है, तो क्लास में आएंगे 7:30 और 7:45 उठकर चले जाएंगे। जैसे भक्ति में मंदिर में जाते थे ना, मंदिर में गए ऐसे करके चलते रहे, ऐसे कई लोग ऐसे भी करते हैं। बम्बई में तो ऐसा चांस कम है, क्यों, आने जाने में इतना टाइम लग जाता है, तो 10-15 मिनट के लिए तो कोई जाएंगे नहीं, सिवाय के ऑफिस नजदीक है। तो ये भी देखना है कि हमारी ज्ञान की लगन इतनी अच्छी हो, जो हम प्यार से मुरली सुने, उसका मनन मंथन करें, और फिर धारण करें। तो हम लोग है रोज मुरली से हम डायरी बना देते हैं। मुरली से क्या करते थे, नॉलेज की पॉइंट, योग की पॉइंट, सर्वव्यापी की पॉइंट, गीता के भगवान की पॉइंट, ऐसे ऐसे अलग लिखते थे डायरी में। योग की आज क्या है पॉइंट, योग में जो जो बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं वो डायरी में लिखते थे, ताकि जब हम प्रवचन करते हैं या ज्ञान किसी को समझाते हैं तो समझा सकें। तो इसलिए स्टूडेंट लाइफ अपने को समझना है, गृहस्थी नहीं समझना है। और जो लौकिक में स्टूडेंट है उन्हों को ये याद रखना है, हम डबल स्टूडेंट हैं। तो एक तो स्टडी रेगुलरली होनी चाहिए। तीसरा, बाबा कहते हैं कि कर्म करते करते योग में रहो, सिर्फ अमृत वेले नहीं, परंतु बाबा कहते हैं कम से कम 3 बारी योग में बैठो, अमृत वेले, फिर मुरली के पहले आधा घंटा और शाम को 7 से 7:30। तो इसलिए जो सवेरे नहीं भी वहां जा सकते हैं, अपने घर में कम से कम अमृत वेला कर सकते हैं, अपने घर में कम से कम शाम को आधा घंटा योग में निकालना, टाइम निकालना पड़ता है, नहीं तो लाइफ बहुत बिजी है। तो इसलिए लक्ष्य रखना है और उसी अनुसार कम में कम दिन में 2 बारी बाबा की याद में बैठना है और अपनी अविनाशी कमाई करनी है। ये बुद्धि में रहे कि ये हमारी अविनाशी कमाई है, तो जितना ये लक्ष्य रहेगा अविनाशी कमाई है तो नेचुरली है करेंगे अविनाशी कमाई। तीसरा, बाबा कहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है दैवी गुण धारण कर, और योग में कर्मयोग भी रहना है तो ट्रैफिक कंट्रोल भी करना है, 6 बजे अपना गीत बजाना, घंटे घंटे बाबा कहते हैं योग करना है। ओम शांति। तो ट्रैफिक कंट्रोल भी घंटे घंटे या कम से कम 2 घंटे 2 मिनट करना है। ये भी ये हम कहेंगे बाबा के डायरेक्शन है। बाबा तो कहते हैं सदैव योग में रहो, श्रीमत तो ये है सदैव योग में रहो, परंतु कम से कम बाबा कहते हैं 3 बारी तो योग में बैठो, शाम को 7 से 7:30, सवेरे 6:30 से 7 और अमृत वेला, और फिर खान पान की शुद्धि, सात्विक भोजन ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ, तो ये भी अपना लक्ष्य रखना चाहिए कि हम अपना भोजन आप ही बनाएं, अर्थात घर में जो माताएं बहनें हैं ज्ञान में हैं उनके द्वारा बनाएं और वो ही अपना भोजन खाएं। आप में से कौन है जिनको समझो मित्र संबंधियों के पास उनका पकाया, ज्ञानी मित्र संबंधियों के पास खाना करता है, जरा हाथ उठाना, या तो ज्ञानियों से चाहे रेस्टोरेंट से चाहे चाहे इधर उधर खाना पड़ता है, जरा हाथ उठाना। अच्छा, बाकी माताओं को नहीं खाना पड़ता है क्या, बाकी सब अवॉइड करते हैं क्या, शादी में इधर उधर मित्र संबंधी के पास जाते हैं, हाथ उठाना जरा। ठीक, अच्छा, तो क्या है ये देखो, यहाँ मैं जानती हूँ इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, माँ बाप के घर जाएंगे और खाना नहीं खाएंगे तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा, यदि माँ अज्ञानी है तो। परंतु ना हमको बहुत वैसे हमारे लौकिक का सहयोग मिला कि जब से मैं सेंटर में रहने लगी तब हमने अपने घर में नहीं खाया। हाँ, हम अपने घर में जाती थी क्योंकि सेंटर और घर हमारा 5 मिनट का ही रास्ता था, तो घर में जाती थी तो दूध या दही या छाछ या ऐसे आइसक्रीम या ऐसे कुछ ही देते थे या फल, क्योंकि हमने कहा कि मुझे नहीं खाना है तो उन्होंने कहा ठीक है। हम जब विदेश से आती थी तो हमारे लौकिक पिता, हमारे जो भी एक्सटेंडेड फैमिली होता है ना, मेरा कजिन ब्रदर है, चाचा है, उसकी वाइफ है, उसकी लड़कियां हैं, ये वो, तो सब 40 मेंबर को भोजन पर बुलाता था मेरे कारण, और मैं खुद नहीं खाती थी। तो मतलब ये भी भाग्य की बात है या अपने में ये होना चाहिए दृढ़ता, क्योंकि जैसे आपने यज्ञ की हिस्ट्री सुनी होंगी ना, कई माताएं बहनों को स्पेशली कुमारियों को बंधन होता था तो माँ बाप जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते थे। और एक बहन ने तो क्या है, उसको तो बेसमेंट में बांध देते थे, घर में ही रखते थे, बाहर आने ही नहीं देते थे, और तामसिक खुराक देते थे तो वो कभी नहीं खाते थे। उनका घर वालों का बनाया हुआ कभी नहीं खाया, मर गई परंतु खाना नहीं खाया। तो विदेश में तो क्या होता है, पार्टियों में जाना पड़ता है। हमारे पास एक बहन थी, पार्लियामेंट हाउस में काम करती थी, तो वो क्या करती थी, जब पार्टियों में जाना होता है तो वहाँ एक बात ये सहज है कि हम पहले से ऑर्डर कर देते हैं कि हम सिर्फ फ्रूट खाएंगे। और पार्लियामेंट में काम करती थी, सेक्रेटरी थी, तो पहले से कह देती थी मैं सिर्फ फ्रूट खाएंगे। और उनको वहाँ तो नहीं फ्रूट डेकोरेट करके देंगे, लाल है, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई सफेद है, ऐसे ऐसे बड़ी प्लेट भर के फ्रूट देते थे। तो बाकी सब कहते थे वाह तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी फ्रूट प्लेटर तो अच्छी है। और क्या होता था कि कई बार समझो क्रिसमस की पार्टी होती थी, तो क्रिसमस की पार्टी में वो लोग क्या कहते, ब्रिंग योर ओन डिश, एक डिश सब बना के लावे, तो उसको तो अच्छा हो गया जाता था। सेंटर से मुठिया वगैरह बना कर ले जाती थी, तो खुद भी खाती थी और भी कहते थे हाँ तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा है। तो क्या होता है कि जब वो लोग हमारा खाना टेस्ट करते हैं तो भल हमारा सिंपल होता है परंतु योग बल होता है तो अच्छा लगता है। तो इसी रीत से विदेश में तो सहज है, कोई बहनें जाएंगी कहेंगी चलो हम आपको पका के खिलाएंगे। मैं भी जब ये अफ्रीका वगैरह में मैंने टूर किया, कोई सेंटर नहीं था तो मैं घरों में रहती थी, लौकिक कोई ना कोई घरों में रहती थी, तो मैं कहती थी मैं अपने हाथ से खाना पकाएंगे। उनको दुख होता था कि नहीं, वो लोग तो समझते हैं नहीं, ये जैसे साधु संत महात्मा आते हैं और हमारे हमको तो कितनी दिल होती है कि हम कुछ मोहन थाल लड्डू ये वो बनावे और ये बहन जी तो कुछ खाती नहीं। फिर हमको कहते थे ठीक है आप दाल चावल बनाते हो, हमारे लिए भी बना दे हो। हाँ? तो हम बाकी खाना बनाती थी, वो रोटी अपनी बना लेते थे। तो इसी रीत से हम जब अपना नियम बनाते हैं तो कई सहयोग दे देते हैं। तो खान पान की शुद्धि फिर होता है। श्रीमत में मेन बात यह है कि हमको संग का ध्यान रखना, मूवी नहीं देखनी है, गंदी किताबें नहीं पढ़नी है, गंदे फोटो नहीं देखने हैं, इवन एडवर्टाइज की ओर जितना कम ध्यान जाए अच्छा है। घर वाले भल मूवी देखें, ज्ञानी नहीं होंगे तो मूवी देखेंगे ना, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि वो लोग बैठे हैं मूवी चलती है हम भी देखते रहें। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये अपना लक्ष्य रखना है कि यदि अज्ञानी घर वाले हैं तो ऐसे नहीं कि उनों के कारण हम भी उनको साथ सहयोग दे, भले उनके साथ घूमने जाओ, परिवार है बच्चे हैं उनको घूमने घुमाने का शौक होगा, यदि घर वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं जाओ भले पर खाओ नहीं, कभी कभी फोर्स करते हैं कि नहीं आप भी चलो, तो चले जाना है क्यों कि लौकिक को भी निभाना है। तो इसलिए ये देखना है कि हमारा संग सत्सात्विक रहे और कोशिश करके अपने घर में किनके पास सुविधा है, बाबा का कमरा रखने का किसके पास सुविधा है, जरा हाथ उठाना, क्योंकि बम्बई में तो छोटे छोटे घर होते हैं और किसी ने अपने घर में कोने में रखा है बाबा का, बाबा का कोना, जरा हाथ उठाना, बहुत है। ये है कम से कम अपना, जैसे भक्ति में हम मंदिर बनाते थे ना कमरे में, अपने खास कमरा नहीं रखते थे परंतु भक्ति में मंदिर रखते थे, पूजा करते थे वहां बैठकर, इसी जिससे अपना कोना बनाना है कि हम बाबा की याद के लिए वहां बैठे हैं तो कोई डिस्टर्ब ना करे। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक माता थी, उसके पास उसने अपनी पेंट्री होती है ना जहां अनाज स्टोर करते हैं, वहां उसको बदल के बाबा का कमरा बनाया और सबको डायरेक्शन था कि कोई वहां डिस्टर्ब ना करे उसको, और वहां तो कुत्ते पालते हैं और कुत्ते तो जहां अपने मालिक जाते हैं उसके पीछे पीछे जाते हैं, कुत्ते को भी डायरेक्शन था इस कमरे में नहीं आना है, और कुत्ते समझते हैं ना उसको जब ना कहते हैं कि नहीं आना है, बहुत समझदार होते हैं। तो क्या है कि अपना नियम बनाकर, अपना जैसे जैसे अपनी सुविधा अनुसार स्थान बनाकर ये करना है ताकि हमें अपना भी स्व उन्नति का हो सके घर बैठे भी, क्योंकि मुंबई में मैं जानती हूँ डिस्टेंस बहुत होते हैं, इसलिए कोई एक बार भी नहीं जा सकते हैं, कोई दो बार ही तो जाना बिल्कुल मुश्किल होता है। विदेश में तो क्या है कि पांडव भवन शक्ति भवन सेंटर के नजदीक है, कई सेंटरों पर जैसे मलेशिया में अमृत वेला 20-25 आ जाएंगे और श्रीलंका में संडे संडे 100 जने आ जाएंगे अमृत वेला, क्योंकि नजदीक नजदीक रहते हैं या कई समझो दूर भी रहते हैं वहां से बस करके आ जाते हैं, स्पेशल बस करके घर से 3:15 बजे 3:30 बजे निकल के 4 बजे तक पहुंच जाते हैं। तो क्या है कि ऐसी लगन होती है तो क्या होता है, हम अपना उपाय निकाल लेते हैं, साधन मिल जाता है। तो एक तो संग और फिर ब्रह्मचर्य का पालन हो तो आप सब ये ख्याल में है ही और पालन करते ही होंगे। और उसके लिए तो बांधे लियो ने कईयों ने अपना बंधन तोड़ा है, सामना भी किया है। विदेश में तो उन्हों को पति ज्ञान में नहीं तो कहेंगा गुड बाय, तुम अपने रास्ते जाओ हम अपने रास्ते जाए। इतने तक कि हमारे पास एक माता थी, उसको एक बच्चा 5 साल का था, दूसरा 8 साल का था और पति ज्ञान में नहीं था, घर छोड़ना पड़ा। परंतु पति कहे बच्चों को भी मैं नहीं दूंगा, तो उसको लड़ना नहीं था बच्चों के लिए, कहा पहले तुम संभालो, छोटे बच्चों को भी छोड़ा। भल करके वहां कायदा होता है कि सैटरडे संडे बच्चे आ जाते हैं, मिलने आते हैं माँ को, माँ के पास रहते हैं। परंतु त्याग किया, इतना नष्ट मोहा बनना पड़ता है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बंधनों को तोड़ने के लिए नष्ट मोहा बनना पड़ता है। नहीं तो क्या है, पति या बच्चों के कारण बंधन में आ जाते हैं। तो इसलिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, परंतु संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, जितना पवित्र बनेंगे नेचुरली है, बाबा की याद अच्छी रहेंगी। और उसके साथ साथ बाबा कहते हैं दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। तो कई है वो लिस्ट रखते हैं, क्या क्या धारण करना है, क्या क्या छोड़ना है। तो उस रीति से फिर अपने आप को चेक करती रहती। एक माता थी, उसने अपने कबट पर चार्ट बना के रखा था, ये छोड़ना, ये धारण करना है, और रोज चेक करती थी कि आज हम क्या गड़बड़ी की, आज क्या धारण किया, आज क्या छोड़ा। तो क्या है कि दैवी गुण धारण करने हैं, विकारों का त्याग करना है, और साथ साथ चार्ट अपना लिखना है रोज रात को। कितने हैं जो चार्ट लिखते हैं? अच्छा है, क्योंकि शुरू शुरू में तो हमने देखा कि हम लोग सब चार्ट लिखते थे, और विदेश में तो क्या करते थे, अपनी डायरी रखते थे पॉकेट में, छोटी डायरी, घंटे घंटे, उन दिनों में 70s में बाबा कहते थे घंटे घंटे अपना चार्ट लिखो, कितने मिनट याद किया। तो कई लोग हर घंटे फिर अपना चार्ट लिखते थे, और हमारे पास एक भाई था, वो क्या करता था, मुरली के पॉइंट्स जब मुरली सुनता था मनन मंथन करता था और कार में रखता था। जब भी ट्रैफिक लाइट आई और ट्रैफिक लाइट में स्टॉप होना पड़े तो वो मुरली की पॉइंट्स रिवाइज करता। तो क्या है कि जैसे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान योग धारणा, ये तो हमारे मुख्य सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमें अपनी युक्ति बनानी पड़ती है। और साथ साथ हमें ये देखना है कि हम ईश्वरीय मर्यादा नियम आदि डायरेक्शन पर भी चलते हैं, क्योंकि श्रीमत ये है कि श्रेष्ठमत हमको सबको चलना है, मर्यादाएं हमको आगे बढ़ने में मदद करती हैं, और डायरेक्शन कभी कभी बाबा हर एक को अलग अलग देंगे ना, अलग अलग परिस्थिति अनुसार उनको डायरेक्शन देते हैं। तो हम लोगों को तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि मम्मा बाबा थे ही उन दिनों में हमारे सामने। मैं ज्ञान में आई, मम्मा उन दिनों में 9 मास बम्बई रही, तो मेरे ज्ञान में आने के बाद 7 मास थी बम्बई में। तो हमारा तो जैसे चाहे लौकिक में भी संस्कार था आज्ञाकारी रहने का माँ बाप के। तो बाबा की श्रीमत जैसे कि हमारे लिए आज्ञा है, इसलिए आज्ञा को पालना और अपने बेनिफिट के लिए ना, अपने फायदे के लिए बाबा जो कहते हैं, बल नियम कड़े लगते हैं कभी कभी, परंतु अपना फायदा है। जब फायदा समझते हैं, कहते हैं ना कायदे में फायदा, नियमों में फायदा है, इसलिए जब ये समझ जाते हैं कि इसमें हमको कितना फायदा होता है, तो नेचुरली वो करना सहज हो जाता है। तो इस रीत से मैंने ज्ञान में आते ही जब निश्चय हुआ 4-5 मास के बाद, तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा मैं अपना इच्छा नहीं होती अपनी प्रैक्टिस करने की, क्योंकि उन समय जब मैं ज्ञान में आई तो मैं हॉस्पिटलों में वगैरह में काम करती थी, गवर्नमेंट है म्युनिसिपलिटी की है, वहां काम करती थी। तो इसलिए मैंने मम्मा को पूछा, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस रखूं। तो मम्मा ने कहा ठीक है, जब बाबा मिले ना तो बाबा से पूछना। फिर 15 साल के बाद जब बाबा से मिली तो बाबा से पूछा, बाबा मेरी इच्छा नहीं है मैं प्रैक्टिस करूं, बाबा की सेवा में लग जाऊं। तो बाबा ने कहा नहीं, डबल डॉक्टर रहना है, प्रैक्टिस भी करनी है। और फिर हमारे लौकिक पिता की इच्छा थी, मैं कांदिवली में थी तो उनकी इच्छा थी कि ये यहाँ ही मैटरनिटी होम खोले, और मैं ज्ञान में थी, मैंने कहा ये तो बंद जाएंगे मैटरनिटी होम, माना कभी भी किसी की डिलीवरी आ जाए हमको वहां बैठना पड़े। और सेंटर भी शुरू किया, मतलब मकान ढूंढ लिया था जब तक मैंने डिस्पेंसरी चालू की, इसलिए मैंने कहा मैं मैटरनिटी होम तो कभी नहीं चालू करेंगी। परंतु दूसरा हमारा बचपन से लक्ष्य था कि हम गांव में जाके सेवा करेंगे। मैं सोचा बम्बई में तो बहुत डॉक्टर है, अभी एक डॉक्टर और ज्यादा ना हो तो चल जाएगा, विलेज में जहां पर कोई डॉक्टर्स नहीं है वहां सेवा करूंगी। और मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं कांदिवली में सेवा करूं, तो मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा क्या करूं। तो जैसे जैसे हमारे सामने कुछ भी समस्या आती थी तो मम्मा बाबा या दादी से, ये हम कहेंगे डायरेक्शन लेना, अपने जीवन में किस तरफ जाना है उसके लिए हम डायरेक्शन लेंगे उसके लिए। फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा अच्छा कांदिवली भी तो गावना है ना, कांदिवली में ही शुरू करो। तो फिर मैंने कांदिवली में बिना सोचे कर लिया। और फिर बम्बई में उन दिनों में सिर्फ 2 सेंटर थे, एक ये वाटरलू और दूसरा सायन। मैं जब ज्ञान में आई, बाद में समझो नलिनी बहन ने घाटकोपर शुरू किया, वो कांदिवली से पहले किया। तो रमेश भाई ने एक दिन पूछा कि आप जरा कांदिवली की और मकान के लिए पूछो प्राइस क्या है, क्योंकि दोनों सेंटर फ्लैट में थे सायन और वाटरलू। तो उनकी इच्छा थी, समझा कि कांदिवली सबब है, दूर है, हो सकता है वहां प्राइस थोड़ी मकानों की कम हो, क्योंकि आश्रम माना तो मकान जैसे होना चाहिए ना, ऐसे बंगलो टाइप फ्लैट में तो मजा नहीं आता है, वो आश्रम जैसा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा जांच करो। तो मुझे संकल्प आया कि हमारी लौकिक बहनों ने शादी की तो हमारे लौकिक पिता ने फ्लैट दिया। अभी मुझे तो शादी करनी नहीं, और हमारे लौकिक पिता ने सब बच्चियों के लिए अलग अलग पैसा रखा था। मेरा मुझे मालूम था, मेरा भी कुछ पैसा पड़ा है, कितना ही मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा, हमारे पिताजी का मकान था, उसके पीछे उनका जमीन का प्लॉट था। तो मैंने मन में सोचा, मैं पिताजी को कहूँ यहाँ मकान बनाए। तो मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा, लौकिक बाप को पूछने के पहले ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा हम हमारे लौकिक पिता से ये प्लॉट मांगे। तो ब्रह्मा बाबा कहते, अच्छा लौकिक पिता यदि प्लॉट देगा, मैं अलौकिक पिता मकान बनाएगा। तो मैंने पूछा पिताजी से, तो कहा नहीं नहीं, लड़कियों को इतना नजदीक नहीं रहना चाहिए, तुम दूसरा फ्लैट ढूंढो, जो मैं पैसा दूंगा पर फ्लैट ढूंढो। तो लिमिट दी के इतना पैसे में फ्लैट ढूंढो। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया। तो क्या होता था, जब भी मुझे कुछ डायरेक्शन लेना था मम्मा बाबा से ले लेते थे, क्योंकि यही यहाँ की खूबी है ना। अभी तो दादियों के पास बहुत कारोबार बढ़ गया है, तो दादियों को सब नहीं मिल सकते, पर उन दिनों में तो हम थोड़े बच्चे होते थे, तो मम्मा बाबा से जो भी अपना पर्सनल डायरेक्शन लेना होता था ले लेते थे। तो क्या होता था कि डायरेक्शन लेने से हम हल्के रहते हैं, और फिर हमको बहुत संकल्प नहीं करना पड़ता है, क्या करें, कैसे करें, करें ना करें, आदि आदि। बाकी नियम मर्यादाओं पर चलने से फिर क्या होता है, हमारी उन्नति ज्यादा होती है। तो इसलिए श्रीमत का जो पालन है, मर्यादाओं का जो पालन है, हम जितना करते हैं उतना क्या होता है, जैसे कमजोर है या छोटा बच्चा है, उसको क्या करते हैं माँ बाप, हाथ देते हैं चलाने के लिए। और जब नए स्थान पर जाना होता है, कोई ना कोई हमें साथ मिलता है। तो क्या है कि अभी हमको पुरानी दुनिया से नए में जाना है, पुराने संस्कार को नया बनाना है, तो इसके लिए बाबा के श्रीमत का हाथ और साथ हमको चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमें भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो भक्ति में हम कितना भटकते रहे और प्राप्ति कुछ ना हुई। कितना बाबा कहते हैं ना, धन भी खर्च किया, समय भी खर्च किया, और टिप्पर भी घिसाई, परंतु कुछ मिला नहीं। अभी बाबा हमें सहज हाथ पकड़कर, डायरेक्शन देकर नई दुनिया में ले जा रहे हैं। उसके लिए बल सब कुछ बातें नई हैं, ज्ञान भी नया, रसम रवा सब नया, परंतु उससे क्या होता है, जितना उसका पालन करते हैं तो उससे क्या होगा, सहज हो जाता है। तो फिर मंजिल पहुंचना डेफिनेट है। नहीं तो कहते रहते थे जन्म जन्मांतर भक्ति करो आपको मोक्ष मिलेगा, मिलेगा या नहीं मालूम नहीं था। परंतु अभी बाबा प्रॉमिस देते हैं कि मेरी श्रीमत पर चलो तो मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा, स्वर्गवासी जरूर बनाऊंगा, जीवन मुक्ति की प्राप्ति जरूर होंगी। तो इसलिए हम जितना अपने पर टेंशन रखकर बाबा के श्रीमत मर्यादा नियम सब पर चलते रहेंगे, तो हम देखेंगे कि भल शुरू शुरू में बाधाएं तो आती है, जिनके घर वाले ज्ञान में नहीं है वो सब नया नया करते हैं तो विघ्न तो डालते हैं, कोई क्रिटिसाइज करते हैं, कोई टीका करते हैं, कोई हंसते हैं, परंतु जब हमें विश्वास हो गया, निश्चय हो गया कि ये सच्चा मार्ग है और इससे हमें प्राप्ति हुई है होगी, तो उससे क्या होता है, सहज हो जाता है सब। तो इसलिए सहज ज्ञान और सहज राज्यों को सहज करने के लिए श्रीमत का पालन बहुत आवश्यक है। ओम शांति। अभी हम 7:30 तक योग करेंगे।